संतप्त मान से शांत हूँ के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। ये दस चरण क्या है? पांच इंद्रियां, तीन बल और आयु और श्वासोश्वास। पांच इंद्रियां तो आप जानते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये सब है। तीन बल, काय बल, मनोबल और वचन बल, और अपने आयु कर्म और श्वासोश्वास। सांस लेते हैं ना, छोड़ते हैं और लेते हैं, तो इन दस चीजों को दस प्राण कहते हैं, प्राण कहते हैं। संसारी जीवों के दस प्राण होते हैं, हम और आप, हमारे और आपके दस प्राण हैं, लेकिन एक इंद्री जीव के चार ही प्राण होते हैं। एक इंद्री स्पर्शन, एक काय बल और आयु और श्वासोश्वास। दो इंद्री के छह होते हैं, तीन इंद्री के सात होते हैं, चार इंद्री के आठ होते हैं, असैनी के नौ होते हैं, असैनी बिंदु के दस होते हैं। इन प्राणों की वजह से ही हमें और आपको प्राणी कहते हैं। सिद्ध भगवान प्राणी नहीं है, क्योंकि उनके ये दस प्राण नहीं है, और इन दस प्राणों के संयोग को लोक में जीवन कहते हैं, और दस प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। सिद्ध भगवान के दस प्राण है ही नहीं, इसलिए उनके संयोग और वियोग का सवाल ही खड़ा नहीं होता। दस प्राण को यदि हम एक नाम से कहें, और शास्त्रों में कहा है, तो उसका नाम है शरीर। इस शरीर में सब आ गए, वो काया आ गई, मन आ गया और वाणी भी आ गई, स्पर्शन इंद्रिय शरीर आ गया, आंख कान नाक भी आ गए, और आयु कर्म के बिना इसकी स्थिति है नहीं, और श्वासोश्वास हम लेते हैं। तो ये शरीर और आत्मा, पर इतनी सी बात है, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, पर बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। जैन धर्म समझना हो इतना समझ लो कि देह माने ये दस प्राण जुदे हैं और आत्मा जुदा है। जो दस प्राणों से जीता है उसे संसारी जीव कहते हैं, और जो चेतना प्राण से जीता है वह सिद्ध भी नहीं, बल्कि सब आत्मा चेतना प्राण से ही जीते हैं। गर्भ संग्रह में गाथा आती है, तिक काले तदुपाना इंद्रिय बल मायु आन पान हुए व्यवहारासो जीवो निश्चय नये दोदु चेदना दस है। निश्चय नये से तो चेतना ही आत्मा का प्राण है, व्यवहार में से दस प्राण। मैं एक बात बताऊं दिनेश भाई आपको, कि जो श्रीमद ने आत्मसिद्धि में कर्ता आदि छह बोल लिखे हैं, उस दिल संग्रह में है। सभी आदमी दूसरी बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, 58 गाथाएं हैं, उसमें वो श्रीमद के जो वो है ना, छह करता है भोगता है, वो सारे बोल इसी में हैं। इसमें 9 हैं, है ना, शुरू में दूसरी गाथा में है ना, क्या जीवो उपयोग मयो अमुत कत्ता सदेह परिणामो अच्छा संसारत्व सिद्धो सो विश्व सो डगी। ये गाथा है दूसरी तीसरी, और इसमें ये सारा वर्णन है जो श्रीमद ने लिखा है। श्रीमद को ये किताब पढ़ने को मिली होगी, उसके आधार पर उन्होंने आत्मसिद्धि में ये बात लिखी है। और हमारे यहाँ तो जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं ना, पहली साल या दूसरी साल ही पढ़ा दी जाती है। हमने भी इसे 10 वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था, वो किताब जो है ना, किताब ने क्या नाम है, नृप संग्रह, लेखक कौन है, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। तो ये कहते हैं कि वास्तव में तो आत्मा का चेतना प्राण है। अब अनादि काल से यह आत्मा इन 10 प्राणों में कम से कम 4 प्राण और अधिक से अधिक 10 प्राण वाला रहा है, और एक समय को भी विग्रह गति में छोड़ दो, ख्याल में आया ना, तो ये आत्मा को इसने कभी छोड़ा ही नहीं है। वैसे विग्रह गति में भी कारमान शरीर तो रहता ही है, तेज शरीर तो रहता ही है, ख्याल में है ना। तो इस तरीके से अनादि काल से ये आत्मा इन 10 प्राणों के द्वारा जीता है, जिसे हम जीवन कहते हैं, इनके वियोग का नाम मरण कहते हैं। अब ये आचार्य कहते हैं कि ये अपने हैं ही नहीं, देह जुदा आत्म जुदा, आत्मा जुदा है और देह जुदा है। छड़ला में लिखा है, देह जीव को एक गिने वही रतम तत्व मुधा है। शरीर और आत्मा को एक माने वो तत्व मुधा है, वो तत्व के बारे में मूर्ख है, दुनिया के बारे में होशियार होगा। हमको ऐसा लगता है कि हमको मूर्ख कह दिया तो ये बहुत बड़ी गाली हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक डॉक्टर है जो अपनी डॉक्टरी में बहुत होशियार है, लेकिन उससे पूछो कि 420 माने क्या होता है, बता सकता है? 320 माने क्या होता है, 302 माने क्या होता है, नहीं बता सकता। तो हम कहें कि वो कानून के बारे में मूर्ख कहना तो अच्छा नहीं लगता है, ना समझे है क्या? नहीं है, बोलिए। आज सर्वज्ञों का जमाना नहीं है, विशेषज्ञों का जमाना है, और जो एक विषय का विशेषज्ञ होगा वो बाकी के विषयों में जीरो होगा, होना चाहिए, तब वो एक विषय का विशेषज्ञ बन सकता है, क्योंकि पूरी तरह उसमें लीन हो जाए, पूरी तरह उसमें जुट जाए, सारा उपयोग उसमें लगाए। क्यों? जो जो लोग अपने अपने क्षेत्र के टॉपर्स हैं, उन लोगों को दूसरी बातों में जाके देखना, वो डाक खाने से एक पोस्ट कार्ड खरीद नहीं सकते। मुझे करोड़ों के रुपयों पर चेक पर साइन करना पड़ते हैं, लेकिन आज तक मुझे कहाँ साइन करना है मुझे पता नहीं है। वो शांति जी आते हैं, कोई आता है कि दादा यहाँ मक्खी मार दो, यहाँ मैं मक्खी मार देता आज तक किसी बैंक में नहीं गया। बैंक के मैनेजर ने कहा कि भाई ये साइन करने पे एक दफे आना पड़ेगा उन्हें यहाँ नमूने के। मैंने कहा इनसे बैंक बदल दो। आखिर मैनेजर साहब मेरे ऑफिस में आए और मेरे साइन करा के ले गए मुकुंद भाई। क्यों? हमको वहां उपयोग मारना ही नहीं है, बनिया दर पर लेना हो तो कहाँ साइन करना पता ही नहीं है। यदि ऐसे पागल नहीं हो अपने विषय के प्रति तो विशेषज्ञ नहीं बन सकते आप, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, जो टॉपर्स लोग होंगे आप उनकी ये विशेषता समझिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज विशेषज्ञों का जमाना है। देखिए, हमारा आयुर्वेद हमारे देश की सबसे सुंदरतम अहिंसक है ना इलाज की पद्धति, और अंग्रेजी जो है ना जो एलोपैथी है वो विदेश से आई हुई है, लेकिन ये बर्बाद हो गई और वो आबाद हो गई। इसका कारण क्या है, कभी रिसर्च किया आपने? रानी जी मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा उसके बर्बाद होने का कारण क्या है, इसके आबाद होने का कारण क्या है, कि एक डॉक्टर है जो आंख कान गले का है, वो तो नाक कान गले का होता है ना, ENT, उसके पास जाके हम कहेंगे डॉक्टर साहब दाढ़ में दर्द है, क्या आपने बाहर देखा नहीं? कि नाक कान गले के पास ही तो दांत है, कौन सा दूर है जरा सा, कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता। उसे एक कहने में शर्म नहीं आती कि दांत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आंख के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, किडनी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, हार्ट के बारे में कुछ, वो भी MBBS तो था ही ना, है ही ना, फिर भी बहुत कुछ जानता है, तब भी वो नहीं जानता है कहता है, बस मेरे से नाक कान गले की बात करो। इसको बोलते विशेषज्ञों का जमाना। और एक आदमी बाजार से रद्दी खरीदने गया था तो उसमें एक आयुर्वेद की किताब मिल गई और उसे पढ़ करके वो वैद्य बन गया। उसके पास जाओ, किसी भी बीमार जाए, कैंसर वाला जाए, हार्ट वाला जाए, सबका इलाज उसके पास है। वो कभी मना नहीं करता कि इन्हें नहीं जानता। और बिल्कुल सारे अस्पताल से डॉट डॉट के मेरे पास आए, मैंने अपना चूर्ण दी, मैंने चटनी दी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्यों? ऐसे कितने लोगों के चक्कर आपने काटे, मैंने भी बहुत काटे, घबराने नहीं। आपको ये करो, उपवास करो, ये करो, अब बस 8 दिन तक जूस जूस पे रहो, फिर 8 दिन तक के लिए फल पे रहो, फिर ये सब किया, 10-10 किलो वजन कम हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बस बराबर हर मर्ज का इलाज उसके पास है, इसलिए आयुर्वेद बर्बाद हो गया, समझे ना। जो सब जानता है वो कुछ नहीं जानता है, सर्वज्ञों को छोड़ देना, मुझे उस जमाने की बात अलग है। और जो एक विषय को जानता है वो विशेषज्ञ है, और वो बाकी के विषयों को नहीं जानना उसकी क्वालिटी है, क्योंकि ज्ञानोपयोग तो सीमित ही है हमारे पास, शक्ति तो हरेक के पास सीमित है, इस कंप्यूटर में भी इसकी सीमाएं तो है ना। क्या डालो, कितना डालोगे? मैंने BA में फिलोसफी ली थी, उसमें मनोविज्ञान का एक पेपर था साइकोलॉजी का, तो उसमें 10 चैप्टर थे, एक मेमोरी का चैप्टर था कि अच्छी याद रखना हो कोई चीज तो उसका उपाय क्या है। भूल जाते हैं अपन लोग हिंदी, तो याद रखना हो तो उपाय क्या है, तो सबसे पहला उपाय लिखा था कि भूल जाना। देख लेना आप जाकर किताब, टोल की किताब, क्या कहे, क्या है उपाय, जो भूलना जानता है वो ही अच्छी स्मृति उसकी होती है। क्या मतलब? कि जो बेकार की बातों को भूलना नहीं जानता है, वो भूलता नहीं है, तो वो काम की बातें उसे याद नहीं रहती है, और जो बेकार की बातों को भूल जाता है उसे काम की बातें याद रहती है। टेलीफोन नंबर याद रहेंगे तो समय साल की गाथा याद नहीं रहेगी, समय साल की गाथा याद रहेगी तो टेलीफोन के नंबर याद नहीं रहेंगे। ये समझ लेना सर, यदि आपको याद है नंबर तो समझ लेना उसकी किताब है। मेरे को मेरे बच्चों के नंबर, घर के नंबर, जयपुर के नंबर, बंबई के नंबर, कोई एक नंबर मेरे को याद नहीं है। यदि मुझे देखा तो उसमें देख करके ही करना पड़ेगा, तो गाथा याद है, क्योंकि दिमाग तो सीमित है ना। मेरी समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, एक और इसमें मरम की बात है कि आप अपने दिमाग को ये आदर दीजिए कि ये भूल जाइए और ये याद रखिए, तो वो आपकी आज्ञा मान लेना। लेकिन आपने यदि उसे कुछ ऑर्डर नहीं दिया तो फिर वो क्या याद रखेगा और क्या भूल जाएगा? जिसमें आपकी रुचि होगी उसे याद रखेगा, और जिसमें आपकी रुचि नहीं होगी उसे वो भूल जाएगा। ये इसका निश्चित नियम है। तो जो चीजें आपको याद रहती हैं, समझ लीजिए आपकी उसमें रुचि है। जो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, समझ लीजिए आपकी उसमें रुचि नहीं है। तो उस विशेषज्ञों की रुचि एक सब्जेक्ट में होती है, इसलिए वो सब चीजें उसे याद रहती हैं और बाकी की कोई चीज उसे याद नहीं रहती है। हमारे पास ज्ञान बहुत सीमित है, तो सीमित ज्ञान का असीमित उपयोग करना हो तो एक विषय में ही करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे तो सब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह सब बढ़िया है, एक ही विषय में करते हैं। लेकिन देखो भाई, यूनिवर्सिटियों में 2 तरह का कोर्स होता है, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल, जानते हैं? किस आधार पर बनाया जाता है वो? क्यों? हिंदी भी दो तरह की होती है, कंपल्सरी हिंदी अलग और ऑप्शनल हिंदी अलग। अंग्रेजी भी दो तरह की होती है, कंपल्सरी अंग्रेजी और ऑप्शनल अंग्रेजी। सुना कभी आपने? क्यों होता है ऐसा कि विशेष ऑप्शनल माने उसकी विशेषज्ञता प्राप्त करना, कंपल्सरी माने उसका सामान्य ज्ञान होना। हमारा जीवन चलाने के लिए हम यहाँ से स्टेशन जाएं, एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचें, फोन कैसे करें, घड़ी कैसे देखें, ये जानने के लिए जो नॉलेज है वो कंपल्सरी होती है कोर्स में। और एक विषय के आपको विशेषज्ञ बनना है तो वो ऑप्शनल होता है। आप चुनिए कौन सा विषय बनना है आपको। हर विषय के आप विशेषज्ञ नहीं हो सकते, ये कंपल्सरी ज्ञान तो चाहिए। तो ऐसे ही हमें आत्मा का कल्याण करना है और हम मनुष्य हैं, तो इसमें हमारा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा और एक ऑप्शनल होगा। हिंदी में तो दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे गारंटी, हर एक को। उस डॉक्टर को भी दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वकील को भी दो पढ़ने पड़ेंगे, पंडित को भी दो पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन? एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल। अब धर्म के हिसाब से क्या कंपल्सरी और क्या ऑप्शनल है? कला बहत्तर पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। बहत्तर कलाएं हैं आदमी में, लेकिन दो उसमें मुख्य है, सरदार हैं। एक तो अपनी आजीविका और एक आत्मा का कल्याण है। ये दो में से आपको दो तो रखनी ही पड़ेंगी। क्यों? कि यदि आजीविका का इंतजाम नहीं रखेंगे तो भिखारी बन जाओगे, क्यों दूसरों पर डिपेंड हो जाओगे ना। तो इंतजाम रखना चाहिए ना गृहस्थ हो तो। और दूसरा आत्मा का कल्याण, तो आत्मा का कल्याण अपना कंपल्सरी सब्जेक्ट है। हर जैनी को नहीं, हर आदमी को, हर मनुष्य को, हर जीव को आत्मा के उद्धार का काम तो करना ही करना है। अब दूसरा कौन है? आजीविका का। तो आजीविका करनी है तो आजीविका के तो कई अनेक प्रकार हैं। कोई डॉक्टरी करके आजीविका करता है, कोई वकालत पढ़ के करता है, कोई धंधा पानी करके करता है, समझी, कोई इंजीनियर बन के करता है। तो जो आपको पेट भरने के लिए जो विद्या चाहिए वो ऑप्शनल है, कोई एक चुन लीजिए, समझे ना। लेकिन इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। आत्मा के उद्धार की कला तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, और जब आप इसमें इतने अधिक आगे बढ़ जाएंगे तो दो ऑप्शनल वाला था वो सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दोगे। हमारे हेमचंद ने कर दिया ना, क्या इंजीनियर थे, नौकरी करते थे, छोड़ दी। अब एक जीव को उद्धार में लग रहे, अब कितना कर रहे कितना नहीं कर रहे थे भगवान जाने, लेकिन लगे तो है ना, ठंडा पानी छोड़ करके 24 घंटा लग रहा है। हमारे दिनेश भाई ने सुना है ना, ये भी लग रहा है, करोड़ों रुपया लगा दिए वहां, क्या करते, कहाँ ले जाते, क्या करते वो करोड़ों रुपयों का, कहीं ना कहीं तो लगानी था ना, बचा के काम। साथ में तो जाने वाले, साथ में तो जाने वाले हैं दिनेश भाई,
बचा के
पचास साल से मेरी जेब में एक नया पैसा आपको भी देखने को नहीं मिलेगा, अभी भी आप देख सकते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, आपके आजीविका की विद्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है, क्या देह जुदा है, 10 प्राण जुदे हैं और भगवान आत्मा जुदा है। प्राण प्राण जुदे हैं और आत्मा जुदा है। कहते तेरे प्राण कहाँ बसते हैं, ख्याल में है ना। तो कहते भाई ये आत्मा का प्राण तो सिर्फ चेतन है, ये देह जो तेरा है 10 प्राण ये तेरा घर नहीं है, ये तो तेरी जेल है। पंक्तियां आती है ना अपने, तन का राग्रह बनता बेड़ी, परिजान जान राख वाले कि तन कारागृह है। हे भगवान, ये शरीर जो है ये जेल है। कारागृह मैंने जेल से समझते ना। और जो पत्नी है वो क्या है? बनिता बेड़ी। जेल में आदमी होता है ना, पैरों में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं ना, तो बनिता क्या है? बेड़ी। भाग नहीं जाए ज्यादा, जैसे बदमाश होते हैं ना अपराधी, तो उनको जेल में डालने के साथ बेड़ियां भी डाली जाती हैं, है ना। हिमचंद जी जैसे सज्जन हो तो उन्हें बेड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। और परिजन जन रखवाले, ये परिजन है ना, कुटुंबी, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, इष्ट मित्र हैं, ये सबको बोलते परिजन। और फिर पुरजन, फिर गांव के लोग हैं, परिजन और पुरजन, ये क्या है? ये रखवाले हैं, ये तेरी रक्षा करने वाले हैं। रक्षा करने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो मिनिस्ट्रियों के आगे पीछे जेड नंबर की सुरक्षा प्राप्त होती है ना, अरे सुरक्षा घूमते ना कमांडो, एक तो वे जितना बड़ा नेता, जितना बड़ा आदमी, जितना बड़ा जोखम, और उतनी अधिक वो जेड नंबर की सुरक्षा। और कितने कितने नंबर होते हैं मैं जानता नहीं जा रहा है, ट्रस्ट जेड है ना। और एक जो बहुत जोरदार डाकू बदमाश होता है ना, उसके लिए भी जेड सुरक्षा होती है। उसको भागना जाए जेल में से आतंकवादी, तो उसके लिए भी कितने पुलिस वाले लगे रहते हैं। तो उनको भी रक्षक बोलते हैं, और इनको भी रक्षक बोलते हैं, इसको भी रखवाले बोलते हैं, तो उनको भी रखवाले बोलते हैं। लेकिन रखवाले रखवाले में फर्क क्या है? उन्हें कोई मार ना दे ऐसे रखवाले हैं, और ये भाग ना जाए, जहर खा के मर ना जाए ऐसे रखवाले हैं। तो अब परिजन है, अब कैसे रखवाले हैं अपने? जेड सुरक्षा वाले हैं। एक कुटुंबी लोग ऐसे सुरक्षा हैं कि तुम भाग ना जाओ इस संसार में से, क्या मरते दम तक पाप करके पाप की कमाई इन्हें छोड़ जाओ, और पाप की गठरी बांधकर अपने माथे पर नरक निगोद में ले जाओ। ख्याल में है ना, जेल में काम करना पड़ता है ना। अरे जेल में तो उम्र बड़ी हो जाए तो थोड़ी सुविधा मिल जाती है, कम मिल जाती है, क्यों? आप अपने मन का काम चुन लो। लेकिन यहाँ तो तुम्हें वही काम, क्यों वो चश्मा का काम, चश्मा का ही करना पड़ेगा धक मार के, मैं नहीं करूंगा। कैसे नहीं करेगा? चल प्रेम से, पापा वहां घर में अकेले बैठे बैठे क्या करोगे, वहां मन थोड़ी लगता है। पर इतनी ये सब सुरक्षक हैं, क्या तनकार आग्रह बनिता बेरी, परिजन जन रख वाले, ये कुटुंबी जन रख वाले हैं। ये सब देह में प्रतिनिधि में आ गए, ये देह के प्रतिनिधि हैं। क्यों? कि इनका संबंध हमारा देह का संबंध है। देह का संबंध माने क्या? ये मेरे पिता, तो कैसे पिता लिखाना पड़े साल में, कि हे शरीर के माता पिता, हे शरीर के बेटे, हे शरीर को रमाने वाली रमणी पत्नी, तो इन सब का संबंध शरीर से है। मेन तलक क्या है? शरीर। हमने शरीर से नाता तोड़ा तो सारे रिश्तेदारियां एक मिनट में खटा। मेन तलक बंद किया, लाइट एकदम अंधेरा हो जाएगा ना। जहाँ दे अपनी नहीं तहा ना अपना कोई, अपन बोलते कि नहीं बोलते। इसलिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूं, किसी का पत्नी से तलाक हो जाए, मरने की बात मैं नहीं कहता, तो पत्नी से तलाक हो जाए तो उसकी ससुराल सुरक्षित रहेगी? क्यों? रिश्तेदार है, ससुराल में जाता है कितना स्वागत होता है, कितना माल मसाला खाने को मिलता है, कितने सब तरह की मर्यादा होती है। और पत्नी से तलाक हो जाए तो चाय पानी भी मिलेगा? जाओ। तो जब पत्नी से तलाक होते ही ससुराल खत्म हो जाती है, तो ससुराल से संबंधी जितने रिश्तेदार माने मेरे साले के मामा साले के फूफा और जितने होते कि नहीं होते, वो सारी रिश्तेदारियां जो पत्नी पक्ष की हैं वो पत्नी से संबंध होने के कारण है। पत्नी से संबंध विच्छेद हुआ तो वे सब खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक बिना कुछ किए। लेकिन मरने की बात इसलिए नहीं करता हूं कि मर जाने के बाद तो भी रिश्तेदारियां कायम रहती हैं, क्योंकि वो समझता है कि इनका क्या दोष है, बेचारी ने बहुत इलाज किया मर गई तो ससुराल वाले जमाई को प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरी शादी कर ले तो भी उस लड़की को भी अपनी लड़की मान के बुलाते हैं, लेकिन तलाक हो जाए तो दूसरी शादी कर ले तो उसको लड़की मान के बुलाएंगे। इसलिए मैं तलाक का उदाहरण देता हूं, हमने संबंध विच्छेद कर दिया तो इस सारे संबंध स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव इस सारे संबंध का मेन तिलक ये शरीर है। और अगर मैं ये मैंने माना कि यही मैं नहीं हूं तो ये सारे संबंध एक साथ टूट जाते हैं, क्योंकि सारे संबंध असद्भूत थे, असद्भूत व्यवहार नए के विषय थे। तो यहां कहते दस प्राण, दस प्राणों से आत्मा ये जीता है, हरेक को मरने का भय है, हरेक को मरने का भय है कि नहीं। अब ये कहते हैं कि मरने का भय काय का नाम है कि देह जुदी ना हो जाए, देह जुदी ना हो जाए। देखो एक बाबा था, पहले बहुत आराम से रहते थे जंगल में, दो चेले थे उसके, लेकिन कहीं से उसे 100 मुहरें मिल गई सोने की। तो वो क्या करे, उस मुहरों को जिस गुदड़ी पे वो बैठता था ना, उस गुदड़ी के अंदर डाल के सीकर उसने बराबर छिपा दी और उस दिन भर उस पर बैठा रहता। और रात में सोता तो उसे डर लगता कि वो गुदड़ी जिस समय दिन भर बैठा था कोई ले न जाए, तो आवाज लगाता, ए पोंगादास जागते रहना चेले को, हे सुंदरदास जागते रहना, कि गुरुजी क्या है क्यों जागते रहना, कि यहाँ डर बहुत है। कि गुरुजी को पहले तो कभी डर लगता नहीं था और आजकल ये डर इतना ज्यादा क्यों लगने लग गया, इसकी जांच करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। जब गुरु जी बाहर गए हुए थे लेटर बाथरूम वगैरह को, तो उसने देखा, जब देखा तो उसने मुहरे मुहरे रखी थी, अरे ये है डर, अब समझ में आया। तो उसने क्या किया कि वो सारी मुहरे निकाल के 1 किलोमीटर दूर एक गहरा कुआ था उसमें डाल आया, वो सब बकरी बैठी की वैसी बिछा ली। रात को फिर गुरु जी ने कहा, सोना दास जागते रहना, सुंदर दास जागते रहना, क्योंकि डर है कि गुरु जी बिल्कुल नहीं है, घबराओ मत। क्या कहता है, मैं तो उसे 1 किलोमीटर दूर एक कुएं में कैद करके आया हूं, अब घबराओ मत आराम से सो। कि क्या कहता है, उन्होंने देखा सारा माल गया है। डर का है, मरने का ही है ना, तो ये हम तुमसे कहते हैं ये तुम्हारा है ही नहीं, इसमें और तुम्हारे के बीच में अत्यंत भाव है, ये शरीर तुम्हारी जेल है, तो जेल से छूटना अच्छा होता है कि बुरा। स्त्री पुत्र तुम्हारे कौन है, रखवाले हैं पुलिस वाले हैं, इनसे भागना अच्छा है क्या बुरा, बोलिए कुटुंबी जन। ये आचार्य कहते हैं 10 प्राणों वाला जो शरीर है वो जुदा है और तू जुदा है, एक दफे तेरे ज्ञान में ये आ जाए तो सारे झगड़े एक साथ खत्म हो सकते हैं, समझे ना। ये मुद्दे की बात है, क्योंकि तुझे इस शरीर के वियोग का ही डर तो है, इसी का नाम तो मरण है, ऐसा मानता है ना, शरीर के संयोग को जन्म कहता है, शरीर के वियोग को मरण कहता है। अब ये कहते हैं शरीर तो तेरा परद्रव्य है, वो तेरे संयोग में कभी आया ही नहीं, वो तो बिल्कुल पुद्गल का बना हुआ है और तू बिल्कुल चैतन्य तत्व है, इन दोनों के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। यदि ये देह के प्रति हमारा एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व टूट जाए तो सारा सब पर पदार्थों के प्रति हमारा कर्तृत्व मुक्तित्व छूट सकता है। देखो देह एक दिन छूटनी तो है, पर ये ऐसा महासत्य है कि जिसे कोई झुटला नहीं सकता, और यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं बेटे अध्यात्म की रुचि वाले हों और चाहे अध्यात्म की रुचि वाले नहीं हों, وہ سب اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. پر اتنا ہی فرق ہوگا کہ کوئی 10 سال بعد, کوئی 20 سال بعد, کوئی 25 سال بعد, کوئی 50 سال, اس سے زیادہ تو میں کلپنا نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ یہاں 25-30 برس سے کوئی کم دکھتا نہیں ہے. کئی سال 10 سال میں ہی چل دے گا. ہم جیسا کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ ہم کوئی 1000 برس تک زندہ رہنے والے نہیں ہیں. یہاں بیسا بیسا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ نہیں, پکا بھروسہ ہے نا کہ ہم 200 برس تک زندہ رہنے والے نہیں ہیں. تو اب 200 برس کے بھیتر کی تو بات رہ گئی نا, تو جانا تو اوشیہ ہوگا, ایک تو نکی بات ہے. اب یدی تم اسے چھوڑ کے چلے گئے تو وہ دھرم ہو جائے, تم دھرماتما ہو جاؤ گے, تم سخی ہو جاؤ گے. اس نے تمہیں چھوڑا تو تم نرک میں گر جاؤ گے. تم نے اسے چھوڑا, سمادھی مرن لیا نا, تو تم سورگ موکش ملے گا. اور اس نے تمہیں چھوڑا تو تمہیں نرک میں گر ملے گا. چھوٹنا تو ہے, نکی تو ہے, بات تو نکی ہے. کیا بس چھوٹنے سے تو بچ نہیں سکتے, صرف اتنی سی بات ہے کہ تم اسے چھوڑتے ہو کہ یہ تمہیں چھوڑتا ہے. کچھ لوگ اریل نیچر کے ہوتے ہیں نا, وہ اڑ جاتے ہیں ہر جگہ, نہیں کون نکالتا میرے کو, میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ذرا سا ہم نے دنیش بھائی ادھر گم ہو کر کے بولے ہی نہیں, نہیں تو بولتا ہی نہیں, کیسا آدمی ہے. اتنی اپیکشا ہوئی تو اس کے چل جاتا ہے. ایک آدمی کو دھکا مارو, پولیس کو بلاؤ, تو نہیں جاتا ہے. ہوتے ہیں دو طرح کے آدمی, انہیں بولتے ہیں اڑیل, جو گھر میں ہر جاتے ہیں, جو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, جو سورگ موکش جاتے ہیں. گھر جنہیں چھوڑتا ہے, دھکے مار کے نکالا جاتا ہے گھر میں سے, پھر نرک نگوت جاتے ہیں. جانا تو پڑے گا. اب یہ اڑیل آدمی ہے نا, اڑ گیا, میں تو گھر نہیں چھوڑوں گا. تو جو کھڑے کھڑے گھر چھوڑتے ہیں نا پیدل چل کے خود, ان کا تو راستہ مہان ہے. لیکن آڑے والے اڑ جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, اب مجھے نہیں ہٹوں گا. تو مر جانے کے بعد بھی ان کو اس چھٹری پہ باندھا جاتا ہے. کیوں؟ اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ کئی دفعہ باہر گیا تو لوٹ کے آ جاتا ہے, کہیں چھٹری پہ سے اٹھ کے گھر میں نے بھاگ آیا ہے. اسے باندھو اچھی طریقے سے, اور باندھ کے شمشان میں لے جاتے ہیں. کئی دفعہ دوسروں کو جلانے کے لیے شمشان میں گیا اور پھر بھی لوٹ کے آ گیا, اس لیے کچھ لوگ اسے زمین میں گاڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پتا کہ زمین میں سے بھی اٹھ کے آ جائے. تو اپن لوگ کہنے ہیں کہ بالکل ختم کرو, آ گیا, بچنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کو گھر لوٹ آنے کی بہت خراب عادت ہے. جلا کے خاک کر دو, اب تو نہیں آئے گا نا. کہ دوسرے دن پھر جاتے ہیں کہ جلا کے نہیں جلا, دیکھ لو. تیسرے دن پھر جاتے ہیں کہ وہ جو ریکھ بچی نا, راکھ بولتے, کیا بولتے, ہڈیاں راکھ جو بچی, تو انہیں لے جا کے گنگا جی میں ڈالو. کیوں؟ کہ ابھی ہوا چلے گی اور راکھ اڑ کے گھر میں آ جائے گی. آج اب گھر میں آنے کی ہے نا اس کی, تو راکھ گھر میں آ جائے گی, تو اسے راکھ بھی یہاں مت رہنے دو اور گنگا جی میں ڈالو کہ وہ بہ کے جا کر کے بنگال کی کھاڑی میں جاری جائے, یہاں رہے ہی نہیں آس پاس. سمجھ لو, نکلنا تو پڑے گا, چھوڑنا تو پڑے گا. یہ دردشا نہیں کرانی ہے تو کھڑے کھڑے چھوڑ دو, اڑ کے چھوڑنا پڑے گا. ہم دیہ کو چھوڑیں, دیہ کو چھوڑے ہوئے نہیں, آتم ہتیا کریں نہیں, دیہ میں ایکتو چھوڑیں, دیہ میں اپنا پن چھوڑیں, دیہ کے سوامی بننا چھوڑیں, دیہ کا کرتا بھوکتا بننا چھوڑیں. اس کا نام ہے دیہ کو چھوڑنا. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تم کیا چھوڑ سکتے ہو اور کیا گرہن کر سکتے ہو. یہ تو جسے جب جانا ہے تب جائے گی اور جب تک رہنا ہے تب تک رہے گی. ہم تو اس کی ممتا چھوڑ سکتے ہیں, ہم تو اس کا ایکتو مت چھوڑ سکتے ہیں. چت بڑو کرتار کو, دنڈ بڑو کرتار کو, چتتیں دیو اتار. بھگوان کا سب سے بڑا دنڈ کیا ہے کہ ہم نے اپنی چت کی گدی سے تمہیں اتار دیا. ہم تمہیں کیا چھوڑیں, کیا گرہن کریں. آج تک ہمارا آپ کا پریم تھا, آج ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارا آپ کا کوئی سمبندھ نہیں ہے,
تو ختم ہو گیا.
اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس سے زیادہ آج تک کچھ کیا ہی نہیں. آج تک یہ مانا کہ آپ میرے ہیں, آپ یہ مان لیا کہ آج میرے نہیں ہیں, کام ختم. سمے سار میں ایک کلس آتا ہے, اس کی چرچا کر کے میں اپنی بات سماپت کروں گا. وکلپ کا پرم کرتا وکلپ کرم کیولم. کیا کہتے ہیں کہ وکلپک, جو وکلپ کرنے والا آتما ہے وہ وکلپک ہے, وہ کرتا ہے. اور اس کا کام کیا ہے, کیا کرتا ہے وہ آتما وکلپک؟ وکلپ کرم کیولم, وہ صرف وکلپ کرتا ہے, اس سے آگے اس کی مریادہ نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا. بہت مارمک ہے سمے سار کا سندھ. یہ آتما صرف وکلپ کا کرتا ہے. اب وہ وکلپ نرتھک ہے کہ سارتھک؟ نرتھک بھی ہے اور سارتھک بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے وکلپ کیا کہ تم سامنے والا مر جائے, کہ سامنے والا کروڑ پتی ہو جائے, کہ سامنے والا کنگال ہو جائے, کہ بدنام ہو جائے, جو بھی ہم نے وکلپ کیا. تو اس کے انوسار پر میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. کوا کے کوسنے سے ڈھور نہیں مرتے, نکی ہے نا, اس لیے نرتھک ہے. اپنا وکلپ نرتھک ہے. کیوں؟ کہ وکلپ کے انوسار جگت میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اور سارتھک ہے. کیوں؟ کہ وہ وکلپ کے کارن تیرے کو کرم بند اوشیہ ہونے والا ہے. تیرے لیے سارتھک ہے, دوسرے کے لیے نرتھک ہے. کتنی بری دشا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو ہوگا نہیں, اور بنا ہوئے ہی ہم اس کی ہتیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو مرے گا نہیں, اور ہمیں اس کے مرنے کا کرم بند ہو جائے گا. کتنا گھاٹے کا سودا ہے وکلپ کرنے کا کام. ہمارے جو من میں وکلپ ہوتے ہیں نا مدن بھائی, وہ وکلپ کتنے نرتھک ہیں. آپ نے جو سوچا کسی کے بارے میں وہ تو گارنٹی سے نہیں ہونے والا ہے, اور کداچت ہو جائے تو بھی تیرے وکلپ کے کارن نہیں ہوا, اس کا اور کوئی دوسرا کارن اس میں ہی ہوگا. سمجھ گئے؟ اب کہ پھر تو ہم نے کوئی اپرادھ کیا ہی نہیں, کہ نہیں بیٹا اس نے تیرے نرک میں وہ جانا پڑے گا. یہ وکلپ, یہ وکلپ کیا, ماتر سوچا, اس کا اتنا بڑا دنڈ انت کال سے سنسار میں رکھ رہا ہے. وکلپ کا پرم کرتا وکلپ کرم کیولم, اور اس کا وکلپ ہی کرم ہے. اور جس نے پر کا کرتا اپنے کو مانا ہے وہ سبکلپست نشتی, نات نہ جاتو سبکلپست نشتی. اس کا کرتی کرتے تو ہے ہی نہیں, جاتو جو تمہارے کبھی بھی, لیکن جو سبکلپک آدمی ہے وہ ناس کو پراپت اوشیہ ہوگا. کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو دوسرے کے بارے میں سوچا ہے اس سے دوسرے کے بارے میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. سنا, لیکن سبکلپ سے نشتی, جو وکلپ کرنے والا ہے اس کا ناش اوشیہ ہوگا. جس کا ناش تم نے سوچا ہے اس کا ناش تو ہوگا نہیں, اور وکلپ کرنے والے کا ناش ہوگا. بولو کتنا بڑا تتھ ہے جین درشن کا. دس پرانوں میں تم جو سوچو گی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ دس پرانوں میں کچھ ڈھونڈ گئے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو پرویز بھائی دو سگے بھائی ہیں, دوسرے نہیں, میں اور میرے بھائی ہے نا, تم سے دیا جانتے ہیں. ایک تھالی میں کھائیں, ایک سا کھانا کھاتے, بالکل جو میں کھاؤں گا بالکل وہی وہ کھاتے بالکل, لیکن ان کا بدن بڑھتا ہی نہیں, ان کا بدن گھٹتا ہی جاتا ہے, میرا بڑھتا ہی جاتا ہے, کیا کریں؟ ایسا تمہارے پاس نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا نہیں جی؟ آپ کو گھر میں کھانے کو نہیں ملتا ہے, بالکل کھانے کو نہیں دیتا ہے, جیسا وہ موٹا ہو رہا تم کیوں نہیں ہو؟ ایک سا مال کھاتے ہیں, ہم تو ان کے گھر میں جا کے کھا کے دیکھا ہے, وہی بپل کھاتا ہے, وہی موٹا نہیں جی کھاتے ہیں, ایک چوڑا ہو جاتا ہے, ایک پتلا ہو جاتا ہے, کیا کریں؟ تمہارے کرنے سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا بھائی صاحب. जिसका जो होता है वो स्वयं से ही होता है, लेकिन जो तुमने उसके बारे में विकल्प किया तो विकल्प करने वाले का नाश अवश्य होता है। विकल्प सब विकल्प सची न करती करते तुम न जात करती करते तुम सभी कल्प से सती, उसका कर्ता कर्म संबंध कभी बैठता ही नहीं है। संत ने एक बात कहकर समाप्त करता हूं। एक अंधा था, एक कुबड़ा था। कुबड़ा समझते हैं, बीच में पीठ में ऐसी निकल आती है ना कुबड़ पीछे को पूछ निकल आती है, तो एक अंधा था एक कुबड़ा था। अब क्या करेंगे, कुबड़ा बेचारा कुछ काम नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता था, अंधे को दिखाई नहीं देता था। उनने कर ली दोस्ती, शास्त्र में लिखा है, राजवार्तक में है जी उदाहरण, अंधे के कंधे पर कुबड़ा बैठ गया और वो उसे लेके चले, वो उसे रास्ता दिखा, दो मिलके एक काम हो गया ना। क्यों अंधे के पैर बड़े मजबूत थे तो चलता था और वो उसकी आंखें थी तो वो उन्हें रास्ता दिखाता था, तो उनका काम चल निकला, उन्हें धंधा भी शुरू कर दिया भीख मांगने का। कुबड़े को भी लोग भीख देते, अंधे को भी देते, तो उनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। क्या करें, वो भी एक प्रोजेक्ट खोल दे रहे। उन दोनों के मन में पाप आया। अंधे ने सोचा कि कुबड़ा कुछ करता तो है नहीं, सारा बदन तो मैं धोता हूं, लेकिन ये आधा हिस्सा मांगे बिना रहेगा नहीं। कुबड़े ने भी सोचा कि अकल तो सारी मेरी लगती है, ये तो मजदूरी करता है, 2 रुपए रोज पे मिल जाए मजदूर तो, लेकिन कमाई तो मेरी है, लेकिन ये आधा मांगे बिना रहेगा नहीं। इसलिए कुबड़े ने क्या किया, जहर लाया बाजार से, घर में जो खिचड़ी बनाते थे ना तो खिचड़ी में जहर डाल दिया और अंधे से कहा कि तुम जरा इसको समझ गया हिलाते रहना, जल ना जाए, मैं अभी आया, जरा मेरे को पेट में दर्द है, ऐसा कहके दूर जाकर के बैठ गया पीट करके। फिर बोला देख आज मेरी तबीयत खराब है, जरा पेट जरा गड़बड़ हो रहा है ना, यदि खाना बन जाए तो तू खा लेना, समझ गए ना, तू खा लेना, सारा काम खत्म हो जाए, सारे माल पे अपना कब्जा हो जाए। फिर आदमी वो जो कर रहा था ना अंधा, तो उसमें से वो भाप निकली जहरीली, वो उसकी आंखों में गई, तो आंखों का जो मोतिया बिंदु था बिना डॉक्टर के ऑपरेशन किए ही गल गया। क्या वो तो बिल्कुल साफ दिखाई देने लग गया उसे, क्या हुआ, उसे शक हुआ कुछ ना कोई गड़बड़ है, तो उसने वो खीर निकाल के थोड़ी सी कुत्ते को डाली तो कुत्ता खाते ही मर गया। अरे बदमाश है, उसने की बदमाशी की है, गुस्सा तो कितना आया होगा उसे, तो वो वहां था नहीं, तो देखा कि वो बैठा है दूर, तो वो गया वहां गुस्से में और जाकर उसकी पीठ में इतनी जोर से लात मारी कि अरे नरक तुम्हें मैं अन्न दे देता, तो उसकी कोवर कुबर ठीक हो गई। और एक दूसरे को मारना चाहते थे और दोनों की बीमारी ठीक हो गई। क्या करें, तेरे मारने के विकल्प से वो मरता है, तेरे बचाने के विकल्प से वो बचता है, दोनों ने नरक जाने का इंतजाम कर लिया, समझे ना। लेकिन वर्तमान में उसका बुरा नहीं कर सका, विकल्प तो सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो करना था वो तो नहीं हुआ ना, और उससे बंद हुआ। विकल्प का परम करता न विकल्पा कर्म केवलम न जातचित न संति कर्तृत्वम सविकल्प से नश्यति। देखो इसलिए कहते हैं भाई कि देह तुमसे बिल्कुल जुदा पदार्थ है, तुम्हारे किसी भी विकल्प करने से उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है, कोई चेंजेड कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए तुम उसमें विकल्पों को तोड़कर उससे भिन्न अपने भगवान आत्मा को जानो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा।